नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया। राज्य सरकार ने गन्ना की खरीद मूल्य में 10 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी का फैसला किया। सीतामढ़ी और वैशाली में बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र। ईडी की टीम वैशाली शहरी विकास सहकारिता बैंक घोटाला मामले में राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आलोक मेहता के 19 ठिकानों पर कर रही है छापेमारी। और पछुआ हवा का प्रभाव कम होने से राज्य भर के मौसम में आया बदलाव, अगले 3 दिनों में ठंड में और कमी आने का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि कुंभवाणी चैनल दूर दराज के गांव तक महाकुंभ के आध्यात्मिक संदेश को प्रसारित करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ एकता का संदेश फैलाता है। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कुंभ मंगल धुन का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन वर्चुअली शामिल हुए और इस रेडियो चैनल के प्रसारण के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि प्रसार भारती ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए महाकुंभ के सीधे प्रसारण के व्यापक प्रबंध किए हैं। कुंभवाणी चैनल के माध्यम से शाही स्नान की लाइव कमेंट्री प्रसारित की जाएगी। आकाशवाणी का कुंभवाणी चैनल आज से 26 फरवरी तक प्रतिदिन सुबह 5:55 से रात्रि के 10:05 तक महाकुंभ की हर गतिविधि पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। यह कार्यक्रम 103.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर उपलब्ध होंगे। इनमें विशेष कुंभ समाचार, महाकुंभ की हर महत्वपूर्ण गतिविधि पर आंखों देखा हाल, भारत की संस्कृति की विरासत पर विशेष कार्यक्रम शामिल है। इसके अलावा नमस्कार प्रयागराज, संगम तट से लाइव टॉक शो, श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य परामर्श, यात्रा से जुड़ी जानकारी, खोया पाया और स्वच्छता जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। कुंभवाणी चैनल न्यूज ऑन AIR और वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत कुमार सहगल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल कौर, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जा रहा है। पौष पूर्णिमा पर पवित्र शाही स्नान के साथ महाकुंभ आरंभ होगा और महाशिवरात्रि के दिन अंतिम शाही स्नान के साथ यह संपन्न होगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम वैशाली शहरी विकास सहकारिता बैंक में 85 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आलोक मेहता के 19 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में छापेमारी की जा रही है। इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर हाजीपुर में 3 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। राज्य सरकार ने गन्ना की खरीद मूल्य में 10 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि पूर्व में भी गन्ना की खरीद मूल्य में 10 रूपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई थी। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि वैशाली और सीतामढ़ी जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए 244 करोड़ रुपए और रक्सौल हवाई अड्डा के विकास के लिए 207 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि इस वर्ष मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत 1000 नए पुल का निर्माण करवाया जाएगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि इनके निर्माण पर 3,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार 100 से अधिक बसावट वाले ग्रामीण क्षेत्रों और टोलों में भी सड़कों का निर्माण करवाएगी। संवाददाता सम्मेलन में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पुलों के टीपीआर निर्माण में अब अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि पटना के IGIMS में ह्यूमन मेटानियोमा वायरस HMPV की जांच शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी के लक्षण वाले 3 मरीजों के सैंपल की जांच की गई, किसी में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। श्री पांडे ने बताया कि पटना के अगम कुआं स्थित राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी 13 जनवरी से HMPV वायरस संक्रमण की जाँच शुरू हो जाएगी। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त एकीकृत प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा रद्द करने की मांग से जुड़ी एक याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादले की पहली सूची जारी कर दी है। पहले चरण में कैंसर पीड़ित शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। विभाग ने पत्र जारी कर कहा है कि 759 कैंसर पीड़ित शिक्षकों के आवेदन मिले थे। संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा स्थानांतरित शिक्षकों के पदस्थापना का आदेश कल तक जारी कर दिया जाएगा। शिक्षकों को 7 दिनों के अंदर नई पदस्थापना वाली जगह पर अपना योगदान सुनिश्चित करना होगा। बिहार पुलिस ने राज्य में 500 रूपये के जाली नोट मिलने की सूचना पर अलर्ट जारी किया है। IG विशेष शाखा ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और रेल पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि जाली नोट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्पेलिंग गलत है। ऐसे नोटों की बरामदगी को लेकर विशेष अभियान चलाए जाने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य और केंद्र सरकार के कार्यों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए आज पटना से NDA रथ को रवाना किया गया। यह रथ राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाएगी। इस अवसर पर भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित थे। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सभी जिलों में NDA का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और सभी दल मिलकर चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। पछुआ हवा का प्रभाव कम होने के साथ ही मौसम के रुख में परिवर्तन आया है। आज सुबह से ही राज्य के अधिकतर हिस्सों में धूप खिली रही। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान ठंड में और कमी आएगी। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ डेहरी सबसे ठंडा स्थान रहा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर को आज बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की उच्च मानद उपाधि विद्यावारिधि से सम्मानित किया गया। पटना में विश्व हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में 20 साहित्यकारों को भी हिंदी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मधुबनी जिले के खोटौना और झांझपट्टी से पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पटना के बेउर केंद्रीय कारा में देर रात पुलिस ने छापेमारी की। CT SP पश्चिमी शरद RS ने बताया कि 2 घंटे तक चली छापेमारी के दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया गया। कटिहार जिले के मनसाही प्रखंड स्थित विशनपुर पंचायत में जिला प्रशासन ने अवैध रूप से चल रही एक खाद दुकान को सील कर दिया है। इस मामले में दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बक्सर जिले के राजापुर थाना क्षेत्र के देवढ़िया गांव में अपराधियों ने घर घुसकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं गोपालगंज जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर झरवा टोला में अपराधियों ने एक सरकारी शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। गया जिले के डेल्हा थाना क्षेत्र के लोको कॉलोनी में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान कुख्यात और इनामी अपराधी प्रहलाद मांझी को पैर में गोली लगी है। उसे मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य सरकार ने कहा कि औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के दक्षिणी उमगा पंचायत के सहियारी टोले में स्थित प्राचीन वट वृक्ष का संरक्षण किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि लगभग एक एकड़ भूमि में फैला यह वटवृक्ष पूर्वी भारत का सबसे पुराना वटवृक्ष है। इसकी अनुमानित आयु लगभग 500 वर्ष है। उन्होंने कहा कि वटवृक्ष के संरक्षण के लिए विभागीय सचिव को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिहार विधान परिषद की एक रिक्त सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए एनडीए की ओर से जदयू के ललन प्रसाद ने अपना नामांकन पत्र भरा है। इस सीट के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 13 जनवरी है। 14 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 16 जनवरी तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। यदि किसी और उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया तो 16 जनवरी को ललन प्रसाद की जीत की घोषणा कर दी जाएगी। गौरतलब है कि राजद के सुनील कुमार सिंह की सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद इस सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र के तुलसी टोल स्थित पहाड़पुर बहियार गांव में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर पुलिस ने एसटीएफ के सहयोग से सराय रंजन थाना क्षेत्र के खेतापुर धर्मपुर गांव से कुख्यात अपराधी वीरेंद्र सदा को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी के पास से एक देशी पिस्तौल और कारतूस समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। किशनगंज जिले के पौवाखाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने 5000 लीटर से अधिक शराब को जब्त कर इसे नष्ट कर दिया। वहीं कटिहार नगर थाना क्षेत्र के ड्राइवर टोला स्थित रेलवे केबिन के पास पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया। राज्य सरकार ने कन्ना के खरीद मूल्य में 10 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी का फैसला किया। सीतामढ़ी और वैशाली में बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र। ईडी की टीम वैशाली शहरी विकास सहकारिता बैंक घोटाला मामले में राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आलोक मेहता के 19 ठिकानों पर कर रही है छापेमारी। और पछुआ हवा का प्रभाव कम होने से राज्य भर के मौसम में आया बदलाव, अगले 3 दिनों में ठंड में और कमी आने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।